हवेली में आर्यन अपने कमरे में था। अदिति उसके कंधे पर सिर रखे बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर बरामदे में बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। काफी दिनों बाद दोनों को कुछ सुकून के पल मिले थे। अदिति मुस्कुरा रही थी। आज तो लग रहा है दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। आर्यन भी हल्का सा मुस्कुराया। काश ऐसा ही हो। तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। कॉल अक्षरा की थी। पहले तो उसने फोन काटने का सोचा, लेकिन लगातार दोबारा कॉल आने लगी। अदिति ने हैरानी से पूछा, उठाओ ना, इतनी बार कौन फोन कर रहा है? आर्यन ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ अक्षरा की बनावटी घबराई हुई आवाज सुनाई थी। आर्यन, तुम अभी कहाँ हो? हवेली में। क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता भी है? किस बारे में? अक्षरा ने जानबूझकर सांसें तेज कर ली। अभी पार्टी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। आर्यन तुरंत सीधा बैठ गया। क्या? विश्वनाथ जी शामली को बहुत गुस्से में वहां से लेकर चले गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूं, माहौल बहुत खराब था। आर्यन का दिल धड़क उठा। लेकिन हुआ क्या? अक्षरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन तुम्हारी और शामली की पुरानी तस्वीरों को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? और सुनो, अक्षरा ने जानबूझकर बात को और गंभीर बना दिया, विश्वनाथ उसे अपने नए बंगले में लेकर गया है। फोन कटते ही आर्यन खुद सेकंड तक वहीं बैठा रह गया। उसके दिमाग में हजारों बातें घूमने लगीं। विश्वनाथ, शामली, पुरानी तस्वीरें, झगड़ा और अचानक वहां से चले जाना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? आर्यन तुरंत संभल गया। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? एक दोस्त परेशानी में है, इतनी रात को मुझे जाना पड़ेगा। अदिति ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो समझ गई कि बात सिर्फ दोस्त की नहीं है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। सब ठीक तो है? आर्यन ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। अदिति उसके पीछे खड़ी उसे देखती रही। उसके मन में भी अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। आर्यन, वो धीरे से बोली, ध्यान से जाना। आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया। अगले ही पल वो कमरे से बाहर निकल चुका था। कुछ मिनट बाद उसकी कार बारिश को चीरती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। वाइपर लगातार शीशे पर चल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में जो धुंध थी वो साफ नहीं हो रही थी। उसे याद आने लगा, पिछले कुछ दिनों से विश्वनाथ का व्यवहार बदल गया था। वो पहले जितना खुलकर बात नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। आर्यन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। आखिर बात क्या है? उसने खुद से कहा। पापा और शामली दोनों इतने परेशान क्यों हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तस्वीर इतनी बड़ी समस्या कैसे बन सकती है। लेकिन शायद बाहर से देखने वालों को बात अलग दिखाई देती हो। अचानक उसे अक्षरा की आवाज़ याद आई, बहुत गुस्से में लेकर गया है। यही शब्द बार बार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। उधर हवेली में अदिति अब भी कमरे में अकेली बैठी थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, बारिश को देखने लगी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर से किसी की परछाई दिखाई दी। अदिति ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। वो कुछ पल तक देखती रही, फिर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। उधर सड़क पर आर्यन की कार तेजी से बंगले की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जगह वो पहुंचने जा रहा है वहां सिर्फ गलतफहमी नहीं थी। वहां कई ऐसे सच भी मौजूद थे जो जैसे सालों से दबे हुए थे, और उन सच्चाइयों के सामने आने के बाद शायद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। बारिश और तेज हो गई। बिजली आसमान में चमकी, और उसी रोशनी में दूर सड़क के किनारे खड़ी एक काली कार कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी। उस कार के अंदर बैठा व्यक्ति चुपचाप आर्यन को जाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। जाओ, उसने बुदबुदाया। अब खेल सच में शुरू होगा। और अगले ही पल वो कार भी धीरे धीरे स्टार्ट होकर अंधेरे में आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ बंगले में, बंगले का मुख्य दरवाजा खुलते ही आर्यन तेज कदमों से अंदर आया। ड्राइंग रूम में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। फर्श पर पुराना एल्बम खुला पड़ा था। उसके कुछ पन्ने बिखरे हुए थे, मानो किसी ने गुस्से में उन्हें पलटा हो। और ठीक सामने शामली सोफे के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब उसके अंदर ताकत नहीं बची थी। आर्यन की नजर एल्बम पर गई, फिर शामली पर, फिर विश्वनाथ पर, जो कुछ दूरी पर खड़े थे। एक पल में जैसे उसे बहुत कुछ समझ आ गया। तस्वीरें, गलतफहमियां, बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, और उन सबके बीच टूटती हुई शामली। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा, बस सीधे शामली की तरफ बढ़ गया। शामली ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आर्यन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपने गले से लगा लिया। बस, उसकी आवाज धीमी थी, अब और मत रो। ये सुनते ही शामली का बांस टूट गया। वो सिसक उठी, जैसे इतने समय से अपने अंदर जो दर्द दबा कर रखा था वो अचानक बाहर निकल आया हो।
उसने भी अनजाने में आर्यन की शर्ट कसकर पकड़ ली। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी बात सुने बिना भी उसका दर्द समझ रहा है। आर्यन की आंखें भी नम हो गई थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हुई थी, लेकिन एक बात साफ थी, श्यामली को इस हालत में देखकर उसके सीने में जो दर्द उठा था वो सिर्फ एक दोस्त का दर्द नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था, कहीं ज्यादा सच्चा। उधर खड़े विश्वनाथ ये सब देख रहा था। उसका जबड़ा कस गया, आंखों में गुस्से की चमक उभरी। जिस डर से वो इतने दिनों से भाग रहा था वही दृश्य आज उसकी आंखों के सामने था। उसका मन चीखकर आर्यन को अलग करने का कर रहा था। उसका मन कह रहा था कि इस कहानी को यहीं खत्म कर दें, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन के चेहरे पर पड़ी उसका गुस्सा भीतर ही कहीं टूटने लगा। वो उसका बेटा था, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, जिसे उसने हर दुख से बचा कर रखा था। विश्वनाथ ने मुट्ठियां भींच ली। गुस्सा था, दर्द था, डर था, लेकिन उससे भी बड़ा था एक पिता का प्यार, और यही प्यार उसे खामोश खड़ा रहने पर मजबूर कर रहा था। श्यामली धीरे धीरे रोते हुए शांत होने लगी। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे। जो भी हुआ है हम बात करेंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर श्यामली की आंखों से फिर आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं बल्कि उस सहारे के जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये पहले वाली खामोशी नहीं थी। अब वहां तीन लोगों के दिलों का तूफान मौजूद था। एक तरफ श्यामली थी जो टूट चुकी थी, दूसरी तरफ आर्यन था जो अपने दिल की सच्चाई से डर रहा था, और तीसरी तरफ विश्वनाथ जो अपने बेटे और अपने प्यार के बीच खड़े होकर धीरे धीरे बिखर रहा था।